नमस्ते, मेरा नाम है नूतन। द प्रिंट के इस पॉड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं आपको सुना रही हूँ शिखा सलारिया की रिपोर्ट। क्या है आजम खान के खिलाफ वह 88वां मामला? सीतापुर जेल से निकलने की राह अभी नहीं आसान। भले ही समाजवादी पार्टी के 73 वर्षीय विधायक आजम खान को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए 87वें मामले में जमानत दे दी जाए, मगर उनके जल्द ही जेल से बाहर निकलने की संभावना न के बराबर है। पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद सपा के इस वरिष्ठ नेता को अब रामपुर पब्लिक स्कूल, जिसके वे अध्यक्ष हैं, उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए जाली भवन प्रमाण पत्र जमा करने के नए आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर कोतावली पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी ने द प्रिंट को बताया, जाँच के दौरान आजम का नाम सामने आया था और उनका नाम FIR में एक आरोपी के रूप में जोड़ा गया है। इस मामले में और भी धाराएं जोड़ी गई हैं और उनके खिलाफ शुक्रवार को एक MP MLA अदालत ने वारंट जारी किया है। त्यागी ने आगे कहा, उन्हें जेल में ही वारंट दिया गया है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रहे मामले में जमानत मिलने पर भी उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। उन्हें रिहा करने के लिए इस मामले में भी उनकी जमानत की ज़रूरत होगी। खान के जनसंपर्क अधिकारी फसाहत अली खान ने द प्रिंट को इस बात की पुष्टि की कि इस मामले में 10 बार के विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन वे आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आजम ने इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत अब 11 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। इस मामले में मार्च 2020 में रामपुर के सैद नगर ब्लॉक के प्रखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 2015 में स्थापित रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग किए जाने की शिकायत दर्ज की गई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसके चांसलर स्वयं आजम खान हैं, इसी ट्रस्ट द्वारा संचालित यह स्कूल यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक वाली जमीन पर रामपुर के एक पॉश इलाके में स्थित है। रामपुर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और आप नेता फैसल लाला ने द प्रिंट को बताया कि स्कूल के लिए इस जमीन, जो कि एक यतीम खाने के लिए निर्दिष्ट की गई थी, इसको 2016 में यूपी वक्फ मंत्री के रूप में आजम खान के कार्यकाल के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लाला ने यह भी कहा कि वहां रहने वाले परिवारों को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक यहां के निवासियों के उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए बेदखली नोटिस का पालन करने में विफल रहने के बाद स्कूल निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए लगभग 50 घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। खान के विरोधियों का कहना है कि इन घरों का मालिकाना हक घोसी मुसलमानों के पास था, जिनमें ज़्यादातर चरवाहे थे और जिन्होंने 2015 तक यूपी वक्फ बोर्ड को किराए का भुगतान कर दिया था। इसके बाद साल 2020 में जाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य शिक्षा विभाग ने इस वर्तमान निर्माणाधीन स्कूल की मान्यता प्रक्रिया की जाँच शुरू की। पहले आजम खान की पत्नी तंजिम फातिमा को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और अब स्वयं आजम खान का नाम जोड़ा गया है। इस मामले में आजम खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। खान फिलहाल 2015 में एनिमी प्रॉपर्टी के तहत आने वाली 86 बीघा और 2 20वां भूमि हथियाने से संबंधित मामले में सीतापुर जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में खान के खिलाफ दर्ज इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में शिकायतकर्ता जमीर नकवी के वकील फरमान अहमद नकवी ने द प्रिंट को बताया कि उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने की प्रक्रिया को एक जटिल कार्य करार दिया था। नकवी ने कहा, अदालत मामले को स्थगित करने के मूड में नहीं लग रही थी। उम्मीद है कि फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। इस मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर 6 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आदेश देने में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इस देरी को न्याय का उपहास करार दिया। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट हिंदी के साथ।